हरे कृष्णा। थोड़ा समय कम है इसलिए आज के इस गौरांग महाप्रभु के जन्मोत्सव में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बहुत ही पवित्र दिन है, जैसे जय पताका महाराज जी ने अभी आपको बताया, जो उन्होंने कहानी बताई वो श्री चैतन्य मंगल इस ग्रंथ में लिखी गई है, जो ग्रंथ लोचनदास ठाकुर ने संपादित लिखित लिखा है। तो रुक्मिणी जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु वादा करते हैं, भगवान कृष्ण वादा करते हैं द्वारकाधीश कृष्ण, और ये घटना घटी थी आध्यात्मिक जगत में कि हम कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे और सब लोगों को प्रेम बांटेंगे, कृष्ण प्रेम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में जो अनोखी बातें हैं वो हम बताने का प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, स्वयं वो अवतारी पुरुष हैं। उनको अवतार में कहना गलत है एक्चुअली, क्योंकि सभी अवतारों के वो उगम हैं, स्वयं वो श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा और कृष्ण एकत्र होकर चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप लिया अपना और यहाँ कलयुग में अवतार लिया। जैसे महाराज जी ने बताया कि उनका अनोखापन एक ये ऐसा है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब जब 1999 कल्प समाप्त होते हैं, एक कल्प जो है वो 4 युगों का होता है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग मिलकर 43,20,000 साल होते हैं एक कल्प के। ऐसे 999 कल्प समाप्त होने के पश्चात जब 1,000वां कल्प शुरू होता है, उसका सत्ययुग बीतता है, त्रेता बीतता है, द्वापर बीतता है और उसके कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, और उसी द्वापर में श्री कृष्ण भगवान भी अवतरित होते हैं। इसका मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार होना, उनका अवतरित होना ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, और हमारा भाग्य ये है कि हम उस कलयुग में जन्मे हुए हैं सब लोग, जिस कलयुग में केवल 523 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने अवतार लिया था। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अभी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था। क्यों? क्योंकि लाखों लाखों और करोड़ों साल के गणित के सामने अगर कुछ 523 साल का गणित सामने आता है तो बिल्कुल नगण्य के बराबर है, न गिनने के बराबर है। इसलिए हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम उसी कलयुग में जन्म लिए हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म होने के पश्चात 10,000 साल तक का जो काल है उसको कलयुग का स्वर्ण युग कहा गया है। उसके आगे घोर कलयुग शुरू होगा और घोर कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी किया है और अन्य जगह में भी आता है। संक्षेप में कहा जाए तो आकाश में बादल होंगे, वर्षा नहीं होगी, पेड़ होंगे उसमें फल नहीं होंगे, भूमि से अन्न नहीं आएगा, मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाएगा, हाँ जो बलवान होता है वो कमजोर को खाएगा, और अंत में माता बच्चे को जन्म देगी केवल उसको खाने के लिए, जैसे शेरनी अपने बालक को खाती है भूख के वजह से, उसे घोर कलयुग कहते हैं। हाँ अभी बहुत दूर है वो, लेकिन ये मत सोचना कि हम आएंगे जन्म लेते रहेंगे यहाँ पर तो हमको शायद घोर कलयुग का दर्शन भी करना पड़ेगा, लेकिन 10,000 साल जो यहाँ से चैतन्य महाप्रभु के जन्म से होते हैं, उस स्वर्ण युग में जो भी भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करेगा, हाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल एक धर्म के भगवान का नाम का लेंगे, तो किसी भी धर्म में योग्य भगवान के नामों का आश्रय जो ग्रहण करेगा, जो उनके नामों को गाएगा, जो नामों को जपेगा, जो उन नामों को पुकारेगा, उस व्यक्ति को उसी जन्म के अंत में भगवत धाम प्राप्त होगा और भगवान के प्रेम और भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा वरदान स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है। इसलिए हमारे भाग्य को हमको पहचानना चाहिए। कभी कभी हम लोग करोड़पति के पुत्र होने पर भी रास्ते पर भीख मांगते हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम कौन हैं, हमारा भाग्य क्या है, कहाँ छुपा हुआ है, ये हमको पता नहीं है। इसलिए करोड़पति का व्यक्ति बच्चा भी अज्ञान की वजह से रास्ते पर दर दर के ठोकरे खाते हुए भीख मांगते हुए भटकते रहता है। हमारी अवस्था भी कुछ कुछ ऐसे ही है। हाँ हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ है इसको हम नहीं जानते, इसलिए हम इस जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों की ठोकरे खाते रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का क्या विशेषता है कि वो, जैसे महाराज ने बताया कि वो भगवान बनकर नहीं आए, अगले अवतारों में वो भगवान बनकर आए, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, तुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, हाँ आगे कलयुग के रूप में आएंगे, सब भगवान बन के आएंगे, लेकिन कलयुग में ये जो उनका अवतार है ये भक्त अवतार है। अपने भगवान की पोजिशन को छोड़कर वो उनका ही भक्त, स्वयं का भक्त बनकर आते हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी ने भी उनको कहा था कि हम भक्तों के दिल में क्या बीतती है ये आप समझ नहीं सकते हैं। सब कुछ जानने वाले हैं भगवान, सब ज्ञान का स्रोत है भगवान, लेकिन फिर भी उनकी सेवा करते हुए उनके भक्तों को क्या लगता है, आनंद होता है? अगर तड़पते हैं उनके लिए तो क्या तड़पते हैं, कैसे उनको भावना तड़प उत्पन्न होती है, क्या दिल में उनका भाव होता है, ये भगवान होते हुए भी उनके दिल में क्या चल रहा है वो तो भगवान जान नहीं सकते। इसलिए इस भगवान के भक्तों के हृदय में जो भक्ति का रहस्य और अनुभव अनुभूति छुपी हुई है, उसका अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं। और साथ साथ भगवान कभी भी आने से केवल एक ही काम पूरा नहीं करते हैं, वो अनेकों उद्देश्य को एक साथ में पूरा कर देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उनका यह है कि हर युग में उस युग का एक धर्म होता है भगवान की भक्ति और भगवान के चरण प्राप्त करने के लिए, और वो क्या मार्ग है उसको कहते हैं युग धर्म, और वो युग धर्म को भी प्रस्तापित करते हैं। और इस कलयुग का युग धर्म क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन दिव्य नामों के युग धर्म को प्रस्तावित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। और इस अवतार में, हर अवतार में जब आते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में आए, उन्होंने नखों से हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया, उसके हृदय को तोड़कर गेंद की तरह जमीन पर पटक दिया। वराह देव ने भयंकर युद्ध करके आसमान में अवकाश में हिरण्याक्ष का वध किया। कृष्ण भगवान ने मुख्य मार मार कर कंस का वध किया। तृणावर्त को हवा से जमीन पर पटका। हाँ, चक्र कौमुदकी गदा शरंगपाणि धनुष्य और हर प्रकार का अस्त्र शास्त्र धारण करके उन्होंने राक्षसों का वध किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने किसी राक्षस का वध नहीं किया। अन्य युगों में वो पापियों का वध करते हैं, लेकिन कलयुग में वो पाप का वध करते हैं। हाँ, और क्या उनकी शस्त्र अस्त्र है? कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, केवल एक ही शस्त्र अस्त्र उनके पास में, वो है भगवान का नाम। और उनके साथ में कौन है? जो उनके शस्त्र अस्त्र है ना, शंख चक्र पद्म गदा धनुष बाण और जो भी धनुष लेके आते हैं, सब वो अस्त्र लेके आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सारे अस्त्र जो भगवान के भक्त हैं, और वो अलग अलग रूप में भगवान के भक्त का रूप लेकर, ब्राह्मण का रूप लेकर या सहायता के रूप लेकर साथ में उनका जन्म लेते हैं। तो लोचनदास ठाकुर जी लिखते हैं कि अंग कौन है उनके? स्वयं बलराम जी, इनको संग कहते हैं, स अंग, और पार्षद उनके जितने भी भक्त हैं उनके। क्या उनकी और एक विशेषता है कि जितने अवतार भगवान के हुए हैं उतने हर अवतार के अपने अपने भक्त हैं। जैसे प्रहलाद जी नरसिंह के भक्त हैं, हाँ हनुमान जी और सुग्रीव और वैसे बंदर बानर जो हैं वो राम जी के भक्त हैं, और कई लोग ऐसे अलग अलग अवतारों के भक्त होते हैं। वो सारे अवतारों के जितने भक्त हैं वो सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जन्म लेते हैं। मैं कुछ नाम आपको बताऊँगा, ऐसे कौन कौन व्यक्ति आए हैं, चंद्र देवता, ब्रह्मा जी, प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप पुत्र थे, नरसिंह भगवान के भक्त थे, स्वयं महाविष्णु जो इस पूरे ब्रह्मांडों का रचयिता हैं, एक व्यक्ति हैं, पुरुष अवतार, नारद मुनि, हनुमान जी, दुर्गा देवी, सांदीपनी मुनि, सब गोपियाँ, कंस भी आए थे चांद काजी बनकर, जय विजय जो द्वारपाल है वैकुंठों के, वो जब भी पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर आए, उसके बाद में रावण कुंभकर्ण बनकर आए, उसके बाद में शिशुपाल दंतवक्र बनकर आए, वही जगाई मधाए जगदानंद माधवानंद बलकर इनके लीला में उन्होंने अवतार लिया। और स्वयं बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में आए। ऐसे एक किताब है गौर गणोदेश दीपिका, उसके अंदर सारे जो इसमें किरदार हैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में वो सब कौन कौन थे पहले अवतारों में, उसका वर्णन दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी अवतारों के जन्म होने के पश्चात उनकी कृपा से आपको मोक्ष मिल सकता है, और कभी कभी मिलता भी नहीं है, उनकी इच्छा है। लेकिन अगर मोक्ष 100% प्राप्त करना है तो आपको कृष्ण के हाथों या कृष्ण के सम्मुख शरीर छोड़ना होगा। लेकिन कृष्ण के साथ सामने अगर किसी की मृत्यु होती है, राक्षस के भी क्यों ना हो, कंस जैसे या दुर्योधन जैसे, तो उनको केवल मुक्ति प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं और लीला करते हैं तो जितने भी लोग इस पृथ्वी पर थे उस समय उन सबको ना केवल मुक्ति प्राप्त हुई लेकिन सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, सबको भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। जितने भी जीव थे उस समय चैतन्य महाप्रभु के लीला के समय 48 साल वो पृथ्वी पर लीला किया उन्होंने, उतने समय में जितने कीड़े मकोड़े जितने भी जीव थे 84 लाख योनि के अंदर, सभी लोगों का चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार करके उनको गौलोक धाम भेज दिया। और ये जानते हुए इस कृपा को प्राप्त करने के लिए श्री श्री गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, इसका ज्ञान है, इसलिए सभी अवतारों के सभी भक्त जो हैं अलग अलग प्रकार से रूप धारण करके गौरांग महाप्रभु के लीला में भाग लेने के लिए अवतार लेते हैं। साथ साथ उन्होंने केवल, जैसे मैंने बताया, मनुष्यों का या देवताओं का उद्धार नहीं किया, पंछी पेड़ वृक्ष वल्लरी जानवर और सभी जीवों का उन्होंने उद्धार किया। क्या उसका प्रूफ है, जब झारखंड से वो गुजर कर श्री वृंदावन धाम की ओर जा रहे थे, जंगल में जब उन्होंने कीर्तन किया तो उनका कीर्तन सुनते पेड़ों ने सारे पत्ते झड़ दिए, जैसे कि रोमांच खड़े होते ना हमारे शरीर पे, उसी प्रकार से सारे पत्ते गिरने लगे अति आनंद से, सब पक्षी नाचने लगे गाने लगे, हाथी सिंह शेर शत्रु जो जानवर होते हैं वो भी गले मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। वो तो केवल एक आवाज़ करते ना, जानवर लोग अलग अलग अपनी अपनी आवाज़ होती है, लेकिन सब लोग उस आवाज़ में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भाव विभोर होकर कीर्तन करके सबका हो उसी समय भगवान चैतन्य महाप्रभु को गोलोक धाम में भेज दिया। फिर गौरांग महाप्रभु के अवतार का क्या विशेषता है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्मम परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज, पहले मेरी शरण में आ जाओ फिर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिला दूंगा, अहम त्वम सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये नहीं कहते कि मैं आपको कृष्ण प्रेम दूंगा, मेरे चरणों की भक्ति दूंगा, वो कहते हैं कि सब दूंगा आपको, मैं आपका पालन पोषण करूंगा, आपको खाना पीना दूंगा, धन दौलत दूंगा, सब दूंगा, लेकिन मेरे चरणों की भक्ति नहीं दूंगा। वो बहुत दुर्लभ है, भागवत में स्वयं कहते हो मेरे चरणों की भक्ति जो है वो किसी विरला व्यक्ति को मिलती है। तो अन्य अवतारों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार ऐसा अवतार है, तो कहते हैं औदार्य अवतार, उदार अवतार है उनका, उनका धाम भी कहा गया है औदार्य धाम। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान, उन्होंने किसी व्यक्ति में कोई योग्यता को भी नहीं दिखा, नहीं कोई कंडीशन रखी, नहीं कोई शर्त रखी, नहीं ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहिए, ऐसा कोई उन्होंने कंडीशन रखा नहीं। केवल जिसके हृदय में श्रद्धा है और श्रद्धा से भगवान का नाम पुकारने की वो इच्छा रखता है और एक बार भी उनको पुकारता है, ऐसे सब व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दे दिया, जिसमें मुक्ति ऑलरेडी सम्मिलित है, मुक्ति इज इंक्लूडेड इन कृष्ण प्रेम, ऐसा ही अवतार है भगवान का। और पहले आपको मैंने बताया कि इनका अवतार इतना दुर्लभ है, इतना समय के बाद में आता है। और चैतन्य महाप्रभु के अवतार का और एक विशेषता है, उनका धाम जो है नवद्वीप धाम, जहाँ पर वो प्रकट हुए, नवद्वीप मतलब नव द्वीप है, नव बेट बोलते हैं, सुनो द्वीप मतलब टापू, ऐसे गंगा नदी के अलग अलग विभाग होने की वजह से नव द्वीप तैयार होते हैं, और उस उन नवद्वीप धाम में योगपीठ जो अंतरद्वीप है वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और उस धाम का ऐसा महत्व है, अगर आप मथुरा जाओगे वृंदावन जाओगे तो बहुत कर्रा धाम अपराध से बचना चाहिए, ऐसे हमको बताया गया है, क्योंकि धाम में अगर अपराध करते हैं तो उसके हजारों गुना नुकसान हमारा होता है, धाम में कोई पाप करता है तो उसका हजारों गुना नुकसान पाप फल के रूप में हमको भुगतना पड़ता है। अगर धाम में आप कुछ भगवान की सेवा करोगे तो उसका भी आपको हजारों गुना अधिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि धाम अपने आप में बहुत एक उत्कट वस्तु है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का धाम ऐसा है, वहाँ पर आप भगवान का नाम लोगे, एक माला करोगे तो आपको हजारों नहीं, मैंने अभी अभी पढ़ा है पद्म पुराण के एक संदर्भ को, 100,000 बार उसका परिणाम उनको प्राप्त होता है। अगर आप एक माला करोगे हरे कृष्ण महामंत्र की तो 100,000 माला करने का लाभ आपको मिलेगा, और अपराध करेंगे तो 1 अपराध के बदले में 100,000 अपराध का फल भोगना पड़ेगा आपको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु धाम में क्या है, आप अगर नाम लोगे भगवान का, कोई सत्कार्य करोगे, भगवान की सेवा करोगे तो उसका आपको लाखों गुना लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप अपराध करेंगे तो आपको उसका गलत परिणाम नहीं होगा, ये उनकी अपने पर कृपा है। लेकिन अगर आप वैष्णव अपराध करेंगे उसका दंड जरूर मिलेगा हमको, तो वैष्णव अपराध की माफी नहीं, लेकिन अगर आप भगवान का भी अपराध करते हैं, धाम में भी रहकर अपराध करते हैं, तो वो गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप धाम में माफ किए जाते हैं। ये उनकी विशेषता है, ये उनकी उदारता है। और ये ऐसा अकेला ऐसा अवतार है भगवान का। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीलाओं में एक ही जीवन काल में, 48 साल के जीवन काल में, कभी चार भुजाओं का दर्शन दिया है, कभी छह भुजाओं का दर्शन दिया है, कभी आठ भुजाओं का दर्शन दिया है, कभी विराट रूप का दर्शन भी दिया है, एक ही अवतार में। ऐसे कभी भी हुआ नहीं है, ये उनका अनोखापन है। ऐसा ही ये गौरांग महाप्रभु का अवतार है। और इनकी जो लीलाएं हैं, इसके बारे में विशेषता ये है कि जो कृष्ण भगवान के भगवद्गीता को हम सुनते हैं, तो भगवद्गीता का अंत कहाँ होता है? जब जीव भगवान के शरण में पहुँचता है, तो वहाँ पर भगवद्गीता समाप्त होती है। श्रीमद् भागवत वहीं शुरू होता है जहाँ पर शरणागत भगवान के भक्त जो है कैसे व्यवहार करते हैं, इसका वर्णन क्या है? श्रीमद् भागवत है। और उसका अंत में क्या होता है? जब भगवान का परम प्रेम जिन्होंने प्राप्त किया है, ब्रजवासी गण, गोपी, भगवान के गोपी भक्त जो हैं, उनके वर्णनों पे श्रीमद् भागवत की समाप्ति होती है। यानी कि भगवान का प्रेम ये श्रीमद् भागवत का कल्मिनेशन है। और जिन भक्तों ने शरणागत पहले से होकर श्री कृष्ण प्रेम को परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त कर लिया है, ऐसे प्रेमी भक्त कैसे व्यवहार करते हैं, इनका इनकी जो कहानियां हैं, ये चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत में केवल प्रेम और प्रेम और प्रेम का ही आदान प्रदानों की लीलाएं का वर्णन किया गया है। इसलिए इनकी लीलाओं को भी औदार्य लीला कहते हैं। केवल एक एक लीला जब हम पढ़ते हैं, तो लोचनदास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज, गोस्वामी महाराज, इन्होंने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, ऐसे अनेक ग्रंथों का वर्णन लेखन किया है। उसमें वो एक एक कथा कहने के बाद में उसकी फलश्रुति का वर्णन करते हैं कि ये कथा सुनने के बाद में क्या लाभ होगा, और हर कथा सुनने के बाद में क्या लिखा है उन्होंने, या तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी, या तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, या चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम गौलोक धाम पहुँचेंगे, चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा आकर्षण पैदा होगा। ये सब शुद्ध भक्ति के ही अलग अलग शब्दों में वर्णन किए हुए आशीर्वाद हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन एवं श्रवण करने से केवल श्री कृष्ण प्रेम और गौलोक धाम में प्रवेश, यही फलश्रुति बताई गई है। ये ऐसा फलश्रुति और किसी लीला में बताया नहीं गया है। अलग लीलाओं को पढ़ेंगे आप, अलग अलग भगवान के अवतारों की, तो पापों से मुक्ति या सब काम वासनाओं की पूर्ति, ऐसे धन की प्राप्ति, समृद्धि और ऐसे सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का सब फलश्रुति कहा गया है। लेकिन महाप्रभु जी की लीलाओं के श्रवण की फलश्रुति क्या है? केवल कृष्ण प्रेम। और साथ साथ विशेष रूप से जो हमको सबको बड़ा पसंद है, हाँ, अगर कोई राक्षस भी है, कोई नास्तिक भी है, कोई अगर पापी व्यक्ति भी है, तो वो भगवान से शायद उनको रुचि नहीं होती है, लेकिन भोजन जो है वो सबको अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए अगर हम भगवान के किसी रूप से साथ हमारा संबंध करना अगर मुश्किल है, वो लोग प्रसाद जरूर खा सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के अंदर बहुत सारी लीलाएँ प्रसाद के विषय में हैं, अलग अलग प्रकार के प्रसादों का वर्णन है, और क्या क्या प्रसाद खाने पर क्या क्या लाभ होंगे इसका वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु जब शाक खाते हैं तो कौन सा शाक खाने के बाद में कौन सा वरदान प्राप्त हो सकता है, ये सब वर्णन आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेगा और किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। हाँ, भगवद्गीता पढ़ेंगे तो आपको केवल फिलॉसफी सुनाई पड़ेगी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र आप पढ़ेंगे तो सब जगह पर भक्तों का आलिंगन, भक्तों का प्रेम, भक्तों का आदान प्रदान, भक्तों के गले लगना, नाचना कूदना, प्रसाद ग्रहण करना, उनका फॉर्मूला सिंपल था बहुत, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। क्या उसका मतलब होता है? भगवान के नाम का कीर्तन करो, नृत्य करो, और थक गए तो प्रसाद ले लो, थोड़ा विश्राम करो, फिर से नाचो, फिर से गाओ, फिर से प्रसाद ले लो, यही है और कुछ है नहीं। द मोस्ट सिंपल, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई परिवार को छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, हाँ सब कुछ दुनियादारी को छोड़ के जंगल में जाना होगा, गुफा में रहना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। इनका लीला में तो केवल पेट भर के प्रसाद ही खाना है। हाँ, सब जगह देखो आप, वर्णन ही वर्णन किया गया है, कौसे कौसे व्यंजन बनाए थे, सच्ची माता ने क्या बनाया था, राघव पंडित ने क्या बनाया था, अद्वैताचार्य ने क्या बनाया था, इसके घर में गए तो उन्होंने क्या बनाया था, हाँ कैसे बनवाया था, कैसे अर्पण किया, कैसे प्रेम से खिलाया, यही इसका वर्णन पूरा चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में प्राप्त होता है। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी कह दिया है, कि जो व्यक्ति 10,000 साल तक इनके जन्म के बाद के समय में भगवान के नाम के जपों के प्रति, जप के प्रति और कीर्तन के प्रति जिनको आसक्ति, प्रेम, लगाव पैदा होगा, उस व्यक्ति को इसी जन्म में अगले जन्म का मुंह दिखना नहीं पड़ेगा, इसी जन्म के अंत में भगवत धाम प्रवेश मिलेगा, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हाँ, हमें कितना आसान लगता है, हमने पढ़ा है, आपको सुना रहे हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी और कितनी गहरी बात है, इसको हम समझने का प्रयास करना चाहिए। हम यहाँ पर इस भौतिक दुनिया में जन्म जन्मांतर तक छोटी मोटी इच्छाओं की वजह से बार बार जन्म ले रहे हैं। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माता के गर्भ का आश्रय ले रहे हैं। फिर बचपन, फिर बुढ़ापा, फिर कष्ट, फिर बीमारी, फिर वही झगड़े, फिर रोग राई, फिर रिसेशन फाइनेंशियल, फिर टेंशन, फिर झगड़े, इस तरह का बार 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 हम यहाँ पर दुख भोग रहे हैं। उससे केवल भगवान का नाम लेने से हम मुक्त हो सकते हैं। कोई हमको कहेगा कि हमको एक काम करने से सब समस्या खत्म हो जाएगी, तो हम उसे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। महाप्रभु की कृपा से ये सब सत्य है, वास्तविकता है, हकीकत है कि अगर हम इस जीवन में खास करके मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात हमारे पास वाचा है, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हमको बुद्धि दिया गया है, हम इस तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं, ऐसे भाग्यवान स्थिति में अगर हम इस जीवन में केवल थोड़ा सा प्रयास करके भगवान के नामों का जप करेंगे, तो इसी जीवन में हम इस दुख भरे जीवन को खत्म करके भगवत धाम में आनंदमय जीवन को बिताने के लिए, भगवान के साथ में रहकर आदान प्रदान प्रेम का करने के लिए हम प्रवेश कर सकते हैं गोलोक वृंदावन में। इतनी बड़ी प्राप्ति इस कलयुग में है, इसलिए इस कलयुग में सारे देवता लोग, सभी लोगों के देवता लोग ऊपर से नीचे तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि कलयुग के भगवान के भक्तों के घर में जन्म ले, क्योंकि लाखों लाखों साल जन्म लेने के पश्चात, लाखों लाखों साल जीने के पश्चात उनको अनंत भोग प्राप्त होते हैं, लेकिन वो भोगों को प्राप्त करने के पश्चात भी देवता लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है। क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, फिर उनको पृथ्वी पर आकर दोबारा जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है। ऐसी अवस्था में वो जानते हैं कि कलयुग में अगर 70-80-90 साल के लिए जीना पड़ेगा, लेकिन भक्तों के घर में आएंगे तो हमें भगवत प्रेम डायरेक्ट प्राप्त हो सकता है। बार बार यहाँ पर आकर कोई अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भोग लेने की जरूरत नहीं है, साक्षात जीवन का जो मूल स्थिति है उस स्थिति को हम कलयुग में ही जन्म लेकर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कली दोषों का सागर होने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के होने की वजह से सारे संत लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि अस्ति एको महान गुणा, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलयुग में अस्ति एको महान गुणा, एक महान गुण है तो क्या है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, केवल भगवान के नाम का, हरि के नाम का जो कीर्तन करेंगे, उसका सहारा लेंगे, वो मुक्त संग परम ब्रजेत, जो परम गति है, जिसके ऊपर कोई गति नहीं है, जिसके ऊपर कोई भगवान का लोक नहीं है, ऐसे भगवान के परम धाम में प्रवेश मिलने जैसी प्रक्रिया इस कलयुग में उपलब्ध दी गई है। इसलिए अनंत दोषों के सागर होने के पश्चात भी कलयुग की लोग पूजा करते हैं, संत लोग, लोग नहीं संत लोग, जो ज्ञानी पुरुष। और आखिर में समझने लायक एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि गौलोक धाम जो भगवान का निवास स्थान है, उस गौलोक धाम में परमोच्च आनंद जो है, जो भगवान अपने भक्तों को देते हैं, वो है रासलीला का आनंद। रासलीला ये जीव को प्राप्त हो सकने वाला सबसे श्रेष्ठ आनंद है, और वो भी अनंत है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई सीमा है, लेकिन परमोच्च दर्जे का जो आनंद है, अनंत परमोच्च मात्रा में जो प्राप्त होता है, वो भगवान रासलीला के रूप में अपने भक्तों को गौलोक वृंदावन में देते हैं, और उसको गौलोक का प्रेम धन कहते हैं, इट इज गोलोकेरा प्रेम धन। और क्या कृपा है महाप्रभु जी की, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप कि ये जो अपने सर्वोच्च धाम का सर्वोच्च धन जो है, प्रेम का धन, वो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में लाते हैं उस रासलीला में भाग लेने के लिए। कितना परमोच्च स्थान की प्राप्ति करने की आवश्यकता है, जो कोई गोपी बनेगा गोपी भाव के प्राप्त करके उसी को ही आनंद प्राप्त है, लेकिन वही आनंद जो परमोच्च भगवान के भक्त हैं उनको प्राप्त है, वही आनंद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से कलयुग में प्रकट किया है, और बिना किसी योग्यता से, ना गोपियों का पद प्राप्त करने के बिना ही, केवल हरि नाम संकीर्तन को दोहराने से, उसमें भाग लेने से, वही आनंद तुम हम जैसे सभी सामान्य जीवों के लिए उन्होंने ये उपलब्ध कराया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दिस, लेकिन जो व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन में झूम झूम कर हृदय से भाग लेता है और नाचता है, उस व्यक्ति को जो आनंद होता है वही रासलीला का आनंद है, इस पर हमको विश्वास होना चाहिए। कुछ क्षण के लिए क्यों न हो, हम सब कुछ चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं, चेहरे पे खुशियां छा जाती है, तेज छा जाता है, आनंद का अनुभव आता है, क्योंकि ये महाप्रभु चैतन्य की कृपा है। हमारे लिए उन्होंने बहुत आसानी से, जैसे हमारा ना गाइड होता है एग्जाम के अंदर, बहुत कठिन एग्जाम होती है लेकिन गाइड उसको एकदम आसान कर देता है, सिंपल एकदम, और एकदम जो बुद्धू व्यक्ति होता है उसको भी 100 में 100 अंक मिल जाते हैं। तो उस तरह से महाप्रभु जी ने सबसे मुश्किल वस्तु जो है वह अपनी कृपा से एकदम आसान करके सबको बांट दी है। और उसमें अगर कोई आरोग्य संपन्न है, कोई रोगी है, कोई सुंदर है, कोई गुरु है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई अच्छे कुल में जन्मा हुआ है, कोई शूद्र कुल में जन्मा हुआ है, कोई गोरा है, कोई काला है, हर प्रकार का भेद जो है ये होने पर भी, कोई बालक है, कोई वृद्ध है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, किसी भी देश के, किसी भी शरीर के, किसी भी अवस्था में होंगे तो भी ये भगवान का नाम लेकर उसी अनुभव को हम प्राप्त कर सकते हैं जो संतों को प्राप्त हैं। कितनी बड़ी कृपा है ये। हाँ, किसी बड़े सबसे उच्च धन को बोलते ना कि हमने सब में लुटा दिया, उसको बिना किसी योग्यता के सब में लुटा दिया। कोई योग्य है नहीं है, कलयुग का है कि सत्ययुग का है, ये सब देखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने इस सर्वश्रेष्ठ धन को सभी लोगों के लिए, हमारे लिए बांट दिया है। लेकिन न केवल हम देने में कंजूस हैं, लेकिन हम देने में भी कंजूस हैं। इतना सारा धन उन्होंने लुटा दिया है हरिनाम के रूप में, लेकिन फिर भी हम जिह्वा से हमारा वो नम निकलने के लिए कितना कष्ट है। हाँ, नींद भी आती है बीच में, हाँ वो उदासीनता भी बीच में है, विक्षेप मतलब मन यहाँ वहाँ भटकता भी हमारा है। इतना सब होने पर भी दुर्दैवम इदृशमिहा, क्या कहते हैं, न जनी अनुरागः, उसके प्रति हम वो अट्रैक्शन नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो ये जो दिन है गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव का, इसका महत्व ही, महात्म्य यही है कि इस दिन में उनकी कृपा जो सारे जीवन भर उपलब्ध है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड रूप में तीव्र रूप में इस दिन में उपलब्ध होती है। इस दिन में जो पुकारेगा उनको अन्य दिनों से अधिक कृपा की प्राप्ति होगी। इसलिए हम सबका आपको बार बार विनती करते हैं, पुकारो, हृदय से पुकारो, आलस्य मत करो, भूल मत जाओ, पुकारते रहो। क्योंकि क्या लगता है उसके अंदर क्या दाम है, कुछ है नहीं, कोई फीस नहीं है। एक मंत्र लो 25,000 रुपये लगेंगे, ऐसा कुछ फीस भी नहीं है, कोई व्यक्ति ले सकता है, औरत हो, स्त्री हो, आदमी हो, पुरुष, बच्चा, बालक, पढ़ा लिखा, अनपढ़, सब कुछ आदमी ले सकता है, हर आदमी ले सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम बड़े गरीब आदमी हैं, हम नहीं कह सकते आप तो अमीर हो, आप तो, आपके लिए योग्य है सब कुछ, आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो ब्राह्मण कुल में जन्म हो, ये सब आप बोल नहीं सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि सबके लिए ओपन कर दिया है, उसको भंडार खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, आओ सब लोग और इसका लाभ ले लो। और इनकी कृपा कैसी अगाध है, इसके लिए हम छोटी सी कहानी बताएंगे, समय थोड़ा कम होने की वजह से। चैतन्य महाप्रभु ने योगपीठ में जन्म लिया, हाँ छोटे से थे वो, उनका नाम था निमाई, क्योंकि उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। जैसे वो बड़े हो गए तो उन्होंने बहुत शरारतें की, आप लोगों ने थोड़ा उनकी कहानी सुनी भी है मंगलवार को, उनकी अनेक लीलाएँ हैं, चटपटी लीलाएँ हैं। उन्होंने नवद्वीप वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया अपने नन्ही नन्ही लीलाओं के साथ। तो एक दिन ऐसे नदी किनारे खेलने गए थे तो उनको बहुत सारे कुत्ते के पिल्ले वहाँ पर दिखाई दिए, तो वो पास में गए, आकर्षित हो गए, तो निमाई बालक ने एक कुत्ते का पिल्ला उठाया। अभी आपको थोड़ा आश्चर्य होगा सुनकर, अभी तो सब लोग कुत्ता पालते हैं तो एक बड़ा गर्व की बात है कि हमारे पास भी कुत्ता है, वेरी प्राउड, आई हैव ऑल्सो डॉग। आपका पास कौन सा कुत्ता है? अल्सेशियन। हमारे पास कौन सा कुत्ता? जर्मन शेफर्ड है। हमारे पास क्या है? वो हमारे पास रोड का कुत्ता है। आज तो ये गर्व की बात हो गई, लेकिन उस जमाने में आप सोचिए कैसा था कि ब्राह्मण कुल के लोग कुत्ते को स्पर्श करते नहीं थे, कुत्ते को छूने से स्नान करते थे, वो भ्रष्ट मानते थे अपने आप। तो निमाई जो है, जगन्नाथ मिश्रा उनके पिताजी का नाम है, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनका माता का कुल भी ब्राह्मण था, पिता का कुल भी ब्राह्मण था। ऐसा होते हुए भी बालक जो होता है वो, उनको बच्चे कुत्ते का पिल्ला अच्छा लगा तो उन्होंने उसको उठाया और घर ले आए। और तभी माता कोई खरीदारी करने के लिए बाहर चली गई थी, तो सब बच्चे उस कुत्ते को, उसमें से बेस्ट पिल्ला जो है वो निमाई ने उठाया। हाँ, सब बच्चों ने झगड़ा किया कि तुमने वो लिया नहीं, हमको वो चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, महाप्रभु जी कहते कोई बात नहीं, मैंने सबसे अच्छा पिल्ला उठाया है, लेकिन आप सबके लिए उठाया, आप सब लोग मिलकर हमारे घर पे आके उसी के साथ हम सब लोग खेलेंगे। तो सब बच्चों को लेकर घर पे आते हैं और वो कुत्ते के साथ में, वो कुत्ते हैं और कुत्ते को कंधे पर भी लेते हैं, उसके साथ में धूल में लौटते भी है, वो कुत्ता भी लौटता है तो ये भी लौटते हैं, ऐसे प्रकार के बहुत सारे खेल करते हैं। और खेल खेल में उनका झगड़ा होता है बीच में, तो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जो है वो, जो झगड़ा होता है दो पक्ष का होता है ना झगड़ा, तो एक पक्ष का साथ देते हैं और दूसरे पक्ष में गलती निकालते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जिसकी गलती निकालते हैं उसको बहुत गुस्सा आता है बालक को, और वो कहता है बोले क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना चिड़े क्यों हो? बोले चिड़ा मैं इसलिए हूँ कि सबसे पहले तुमने सबसे बेस्ट पिल्ला तुमने चोरी किया है। ऐसा करके वो लाल होकर बालक जो है निकल जाता है घर से, और ये अपने अपने बच्चों के साथ में कुत्ते से खेलते रहते हैं। जैसे वो बाहर निकलता है तो माता, सच्ची माता, निमाई पंडित की माता जो है वो मार्केट से आती रहती है। वो लाल आंखें देकर वो बालक कहता है, माता आप जानती हो निमाई पंडित ब्राह्मण होते हुए भी कुत्ते के साथ खेल रहा है, धूल में लोटपोट हो रहा है, कंधे पे कभी रख रहा है, कभी हाथ में लग रहा है, कभी चुम्मा लग रहा है उसका, और ऐसे करके निकल जाता है। क्या कह रहे हो तुम? ऐसे करके माता जो है भाग भाग के घर जाती है। देख रहे सब बालक मशगूल हैं, कंधे पे कहीं नचा रहे हैं, कभी जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं, कभी उसको हाथ में दे रहे हैं। बोले निमाई कैसे बालक हो तुम? हाँ यही हमने तुमको सिखाया था, तुम ब्राह्मण के बालक हो फिर भी तुम कुत्ते के साथ में खेलते हो, हमारे घर में खिलौने कमी है क्या? आप किसी भी खिलौने के साथ खेल सकते हो, आप कुत्ते के बल्ले को खेलते हो। माता देखो कितना सुंदर पिल्ला है, इसकी हरकतें तो देखो, उसकी अदाएं तो देखो। नहीं नहीं मैं इसके साथ खेलूंगा। तो माता कहते हैं नहीं नहीं खेलना है आपको इसके साथ में। फिर वो कहते हैं देखो ऐसा है निमाई, तुम देखो कितने धूल से भरे हुए हो, बहुत देर से खेल रहे हो, जमुना गंगा जी किनारे में खेलते आ रहे हो। अब ऐसा करो मैं कुत्ते के बिल्ले को रखती हूँ और तुम सब लोग बालक जाके गंगा जी में स्नान करके आना, तब तक कुत्ते के बिल्ले को मैं संभालूंगी। तो अपने हाथ से निमाई उस कुत्ते के पिल्ले को एक कुर्सी से बांध देते हैं और कहते देखो माता इसको संभाल कर रखना, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक इसको देखना, कुछ करना नहीं इसको, मैं आ रहा हूँ जल्दी स्नान करके। और निकल जाते हैं स्नान करने के लिए। बहुत देर तक जब गंगा जी में स्नान करते हैं, कूदते हैं, अपने आप को पानी उछालते हैं, इतने में सच्ची माता सोचती है कि तरह हमारा बालक अभी मशगूल है, कुत्ते के पिल्ले को छोड़ देती है और घर से बाहर भेज देती है। कुत्ते का पिल्ला भी बाहर भागते भागते निकल जाता है। उतने समय में जब निमाई लौट के आता है तो पूरा घर में ढूंढता है, किधर है मेरा कुत्ते का पिल्ला? माता मैंने आपको कहा था कि संभाल कर रखना उसको, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, क्या आपने उसको छोड़ दिया? नहीं नहीं मैंने तो यहाँ बांध कर रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। इस तरह से बहुत देर बहस होती है। फिर माता कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम भूखे हो बहुत, मैं तुम्हें अभी अच्छा अच्छा मक्खन खिलाती हूँ, अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, संदेश खिलाती हूँ, और मेरे गोद में तुम सो जाना, मैं अच्छे से गीत आपको सुनाऊंगी। थोड़ी देर में थक जाके निमाई सो जाता है। एक कहानी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? क्योंकि निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श उस कुत्ते को होता है, कुछ खेलने के बहाने हो, कुछ भी कारण से हो, वो कुत्ते के जीवन पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, हृदय परिवर्तन होता है, और अपने कुत्तों की जो हरकतें हैं उसको छोड़ देता है वो। और कुछ देर बाद में ऐसा पता चलता है कि वो छोटा सा पिल्ला दो अपने हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। क्या बोलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार्केट के अंदर से घुसता है और नाचता है और सुर में गाने लगता है। जैसे वो सुर में गाने लगता है सारे बालक उसके पीछे लगते हैं और वो भी उसके हाथ में गाने लगते हैं। जब बालकों को देखते हैं तो बालक देखते हैं कौन बालक गाते गाते जा रहे हैं, देखते हैं कि उसके सामने एक कुत्ते का पिल्ला है जो कीर्तन का नेता है और जो कीर्तन कर रहा है लीडिंग कीर्तन। तो सब बड़े बड़े लोग भी उसके पीछे लगते हैं कुतूहल से, अरे क्या हो रहा है, ये क्या चमत्कार है। ऐसे करते करते नवद्वीप के बहुत सारे लोग, बड़े बूढ़े आदमी औरतें छोटे बच्चे सब लोग जा रहे हैं जुलूस के अंदर। अरे क्या, कहाँ जा रहा है जुलूस? तो सब जुलूस के आगे एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है, दोनों हाथ ऊपर करके बोल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कुत्ते का पिल्ला सबको गंगा के किनारे लेके जाता है और बड़े बेहोश मदहोश होकर हरिनाम कीर्तन करता है। सब लोग नाचते हैं उसके कीर्तन में। आप सोच सकते हैं इस सीन को? हाँ आपको लगेगा कि वो ऐसे ही कहानी बना के बता रहे हैं। हाँ ये सच कहानी है, चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर ने इसका वर्णन किया है। तो सबके आंखों के सामने आनंद विभोर होकर एक कुत्ते का पिल्ला नाचता है और उनकी आंखों के सामने उसका देहांत हो जाता है अचानक। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उससे आगे और आश्चर्य की बात होती है। उनकी आंखों के सामने, सब जन समुदाय की आंखों के सामने वहां पर वैकुंठ से एक विमान आता है जिसके सारे अंग जो है रत्नों से हीरों से भरे हुए हैं। उसके अंदर सुंदर सुंदर विष्णुदूत खड़े हैं और उस विमान के आसपास में सारी देवताएं खड़े हैं। और वो देवताएं जो गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, किम पुरुष है, ऐसे अलग अलग लोगों के जो दिव्य देवताएं हैं वो सभी लोग वहां पर विराजमान है और वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और सबकी आंखों के सामने ये कुत्ते का जो आत्मा है वो दिव्य देह प्राप्त करके उस विमान में प्रवेश करता है। उसको बड़े आदर के साथ में माला पहनाते हैं सभी विष्णुदूत। हाँ उसका सत्कार करते हैं, हीरों की रत्नों की माला पहनाते हैं, उनको आसन में बिठाते हैं, जो आसन भी बहुत भव्य दिव्य बना हुआ है, और ऐसे आसन में बैठते हुए गीत गाते हुए वहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक आदि, शिव ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक चार कुमार, ब्रह्मा जी के चार पुत्र जो हैं, और अन्य देवताएँ वहाँ पर आते हैं और इस कुत्ते के पिल्ले का गुण गौरव करते हैं, और सबकी आंखों के सामने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा शिव के साथ में विमान में बैठकर ये कुत्ते का पिल्ला जो है वो गौलोक धाम में प्रवेश करता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गौरांग महाप्रभु की कृपा जो है ये केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, जानवर और निचले जीव भी हैं उन पर भी उनकी कृपा होती है। वासुदेव दत्त के कहानी प्रार्थना के कारण उन्होंने उस समय जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में उपस्थित थे उन सब का उद्धार करके उनको गौलोक धाम में भेज दिया। तो आप थोड़ा सा हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ये क्या कृपा है चैतन्य महाप्रभु के अवतार की, ये क्या कृपा है, क्या हमें ये सब कृपा प्राप्त हो सकती है? उसका उत्तर है यस। अगर हम केवल श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण भगवान का एक बार नाम लेते हैं तो हमें ये कृपा प्राप्त हो सकती है। जरूर ही हमारा शरीर मनुष्य का है तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारा शरीर उस कुत्ते के पिल्ले से श्रेष्ठ है, हाँ, लेकिन जिसको जिस भी शरीर में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का संपर्क होता है उस व्यक्ति में ऐसे ही अद्भुत परिणाम को हम देख सकते हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन में भी हमारा जो इतना पतित है, आलस्य से भरा हुआ है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, पाप कर्मों के परिणामों से भरा हुआ है, यहाँ के वहाँ के ठोकरें हम खा रहे हैं, अगर ऐसे दुख के सागर में अगर आनंद की लहरें आपको लानी हैं तो आपको चैतन्य महाप्रभु के कृपा का स्पर्श होना जरूरी है, और वो कृपा का स्पर्श बड़ी आसानी से हमको हो सकता है अगर हम श्रद्धा से भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल ही जयपताका महाराज ने यहाँ बैठकर बताया था कि भगवान की कृपा को प्राप्त करना है और श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो उसमें से एक मार्ग है, मैंने बताया, भगवान का नाम का जप करना। दूसरा मार्ग है भगवान का मूर्ति का अभिषेक करना। भगवान के श्री विग्रहों का अभिषेक करने से भी श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी काम भगवान के संपर्क में हम करेंगे, प्रसाद को ग्रहण करें, अभी आपको कुछ देर बाद में भगवान को भोग लगाया, अपने प्रेम से घर में लाया, आपका सबका धन्यवाद है, आप सब लोग ने अपने घर से श्री गौरांग महाप्रभु के आनंद के लिए भोग बना कर लाया, भगवान ने उसको स्वीकार किया है, अपने प्रेम से बनाया, इसलिए अगर आप उसको आप प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करते वक्त केवल आपको श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों पर ध्यान करना है, बस कि ये गौरांग महाप्रभु के द्वारा दिया गया महाप्रसाद है। ऐसे भावना से आप एकाग्र होकर ग्रहण करेंगे तो भी आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कृपा है नवद्वीप धाम में कि गंगा जी जो नवद्वीप धाम में बहती है, केवल वो टापू जो है वो तो हिमालय से बहती है, सब जगह जाती है, गंगा सागर तक जाती है। नवद्वीप धाम छोड़कर और कहीं भी आप स्नान करेंगे गंगा में तो उसका फल क्या है कि आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसी गंगा में आप स्नान करेंगे जब वो नवद्वीप के अंदर से बहती है तो कहा गया है कि उस गंगा जी को आप दूर से अगर देखेंगे, केवल ओनली यू सी गंगा विथ लव एंड डिवोशन, तो भी आपके मन में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा, और आप वहाँ पर अगर गंगा में स्नान करोगे तो आप केवल पापों से मुक्त नहीं होंगे, आपको श्री कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कृपा है इनके धाम में, इसलिए उनके धाम को औदार्य धाम कहा गया है। और हमारा भाग्य क्या है कि हम इस समय इस विश्व में जीवित हैं, जो केवल 523 साल होने के बाद में महाप्रभु के अवतार के बाद में जो समय है इसमें हमने जन्म लिया है, स्वर्ण युग में कलयुग के, ये हमारा भाग्य है। कभी कभी अपना भाग्य भी हम पहचान नहीं पाते, इसलिए हमको पहचानना चाहिए कि हमारा भाग्य क्या है। हम सब लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे ही साथ में हम सब लोग गौलोक वृंदावन में होंगे अगर हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ में इस चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।